रेडिकलाइजेशन के साइंस हैं, इनको आप स्टडी करें. और क्योंकि ये सिर्फ रेडिकल ही नहीं बच्चों को करते, बल्कि उनको वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं और उनको रिक्रूट भी फिर करते हैं. खासतौर पे जो ज्यूइश फेडरेशन ऑफ ऑटावा है, उसने भी अब बहुत सारे वार्निंग्स अपनी कम्युनिटी को दी हैं दैट दे हैव टू बी अलर्ट. तो ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा कनाडा में बढ़ती जा रही हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है जी क्यूबेक के इमरजेंसी डॉक्टर्स को, उन्होंने कहा है जी कि दे आर अलार्म्ड जो कि सिचुएशंस हैं उनके इमरजेंसी रूम्स में. ये एक लेटर लिखा है द रिक्रूटमेंट, अगर ये मैं फ्रेंच नेम है अगर मैं सही ले रही हूं, शेडेवुआ क्यूबेक, शेडेवुआ क्यूबेक का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रही है कि जो इन्होंने जो लेटर लिखा है अपने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ क्रिश्चियन ड्यूबे को प्रोविंस के अंदर, उनको कहा है कि ईआर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं और ये अभी तक इसलिए चलती जा रही हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शनली डेडिकेशन जो है प्रोफेशनल्स की है और वो क्वालिटी केयर के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका हौसला खत्म हो गया तो ये सब का सब जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये क्लैप्स कर जाएगा. उन्होंने कहा है कि आपको मिनिस्टर्स जो साहब आपको इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, आपका ज्यादा ध्यान बिल 15 पे और हेल्थ केयर सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने की तरफ है, लेकिन अगर ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये अगर जाना शुरू हो गए तो सारे का सारा जो नेटवर्क है हेल्थ केयर का वो शट डाउन हो सकता है. खासतौर पे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे बेतहाशा जो है वो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है. वो कहते हैं जी वन एक्सेस डेथ फॉर एवरी 82 पेशेंट्स एडमिटेड, और उसमें वो कहते हैं जी कि इस डेटा के अंदर जो इनडायरेक्ट डेथ्स हो रही हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा कभी किसी एक्सीडेंट में जख्मी हालत में आता है या जिसको किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो कहते हैं जी वो इसके अलावा हैं. तो इसकी तरफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा जी ध्यान देने की जरूरत है. रॉयटर्स की एक खबर है जी और इसके मुताबिक कैनेडियन गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर सकती है कि बिल्कुल तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं जीरो एमिशंस की तरफ जाएंगी बाय 2035, और ये एक न्यू रूल कैनेडियन गवर्नमेंट लाने वाली है, शायद इसी वीक में उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अवेलेबिलिटी स्टैंडर्ड. तो इसमें वो कहते हैं जी कि तमाम लोगों को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये इंश्योर करेगी गवर्नमेंट के उनको अवेलेबल हैं. क्यूबेक और बीसी ने ऑलरेडी ये जो रेगुलेशन है ये किया हुआ है कि जीरो एमिशंस जो की तरफ जो है प्रोविंसेस को लेके जाया जाए. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कहना है कि जीरो एमिशन व्हीकल्स जो है वो इंक्लूड करती हैं बैटरी इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइड्रोजन मॉडल्स जो कि 20% ऑफ ऑल न्यू कार्स रिप्रेजेंट करेंगी इन 2026, 60% इन 2030, 100% इन 2035. ग्लोबल ईवी सेल्स जो हैं वो दे मेक अभी जो है 13% ऑफ ऑल व्हीकल सेल्स, लेकिन ये अब राइज करने वाली हैं बाय द एंड ऑफ द डेकेड टू 40-45%. और ये जो डिटेल्स हैं ये आज पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने दी है. तो उसी सिलसिले में कैनेडियन गवर्नमेंट भी जो है अब इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहती है. एप्पल की तरफ से ये वैसे एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एप्पल वॉचेस और एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं. एप्पल ने कहा है कि वो अपनी जो सीरीज 9 और अल्ट्रा 2 की वॉचेस हैं बिफोर क्रिसमस उनकी सेल्स एब्सोल्यूटली वो बंद कर देंगे, क्योंकि इनका एक पेटेंट का डिस्प्यूट चल रहा है विद अ मेडिकल टेक्निकल कंपनी मसीमो. क्योंकि आपको पता ही है कि जो है एप्पल की वॉचेस, इसके अंदर वो आपका ब्लड प्रेशर बताती हैं और चीजें आपकी वो उसमें ब्लड ऑक्सीजन के वो दिखाती हैं. तो वो कहते हैं जी कि वो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर जो है वो इन बोथ मॉडल्स में है, लेकिन उसके ऊपर पेटेंट के ऊपर अब लड़ाई चल रही है मसीमो से, तो इसलिए अब इसको डिसकंटिन्यू करेंगे. वो कहते हैं जी कि ऑनलाइन सेल्स ऑन एप्पल डॉट कॉम डिसंबर 21 को बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी और इन स्टोर डिसंबर 24 को एब्सोल्यूटली बंद कर दी जाएंगी. एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी, और ये अब ज्यादा ही खतरे की तरफ जो है मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर इशारा कर रही है, क्योंकि इसमें यूएस और यूके दोनों ने कहा है कि ओवर द वीकेंड उन्होंने 15 अटैक ड्रोन्स जो के आए थे हूतीज की तरफ से, उनको उन्होंने मार गिराया है रेड सी के अंदर. यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसने कहा जी कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है उसने रिस्पॉन्ड किया था टू अ वेव ऑफ ड्रोन्स जो कि हूथी कंट्रोल्ड एरिया ऑफ यमन जो है उधर से छोड़ा गया था रेड सी के अंदर. और लेकिन वैसे उससे कोई जो है शिप को कोई डैमेज नहीं हुआ है और ना ही कोई इंजरीज आई हैं. इसके अलावा यूके के डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं ग्रांट शैप्स, उन्होंने भी कहा है कि रॉयल नेवी डिस्ट्रॉयर AHMS डायमंड ने फायर किए हैं सी वाइपर मिसाइल्स, और उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किए हैं ये जो ड्रोन्स थे जो टारगेट कर रहे थे मर्चेंट शिप्स को। और हुतीज ने कहा है कि वो इजरायली सिटी इलात जो है उसको अब अटैक करेंगे, और अगर कोई भी इस तरह के शिप्स जो हैं गुजरे अमेरिका या बाकी के नेटो के कंट्रीज के रेड सी से तो उनके ऊपर वो अटैक करेंगे। आपको बताइए कि रेड सी जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स है, लेकिन हुतीज जो है वो जरा प्रेशराइज करना चाहते हैं इसराइल को कि वो गाजा के अंदर स्टॉप करें वॉर, लेकिन इससे वॉर का जो फिर आपको पता ही है सर्कल ज्यादा बढ़ भी सकता है। इसराइली जो लिंक्ड शिप्स हैं उनके बारे में इन्होंने कहा जी कि अगर इन्होंने यमन के पास वाटर्स में रेड सी में दाखिल होने की कोशिश की तो इनको हर हाल में टारगेट बनाया जाएगा। तो ये थोड़ी सी खतरे की बात है। रॉयटर्स की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक पुतिन साहब ने जो बाइडन साहब ने कहा था कि ये नेटो किसी कंट्री पे अटैक कर सकता है उसको बिल्कुल रद्द किया है, और उन्होंने डिसमिस करते हुए कहा जी कि फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी नहीं करना चाहते हैं, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, और ये तो जो रशिया के इंटरेस्ट हैं उसके काउंटर ये रन करता है। एक इंटरव्यू दे रहे थे पुतिन साहब रशिया के स्टेट टीवी को जिसमें कि उन्होंने बाइडन साहब को वार्न किया था कि जो है ये नहीं होएगा, क्योंकि बाइडन साहब ने भी उनको वार्न किया था जब वो कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमको यूक्रेन को और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर ऐसा हमने ना किया तो रशिया जो है वो किसी भी एक नेटो एलाई के ऊपर अटैक करेगा और इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है। इस पर बात करते हुए पुतिन साहब ने कहा कि रशिया के पास कोई रीजन, कोई इंटरेस्ट, कोई जियोग्राफिकल इंटरेस्ट या कि कोई इकोनॉमिक पोलिटिकल मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करें, और रिलेशंस जो हैं दोनों कंट्रीज के बीच में आपको पता ही है अमेरिका और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा खराब होते गए हैं, और खासतौर पे ज्यादा खराब हो गए हैं जब से कि यूक्रेन और मॉस्को की लड़ाई फरवरी 2022 से शुरू हुई हुई है, और इस 2022 मंथ की जो वॉर है इसमें यूएस अभी तक यूक्रेन को 111 बिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स इक्विपमेंट और दूसरी एड जो है वो दे चुका है ताकि रशिया को जो है मार भगाया जाए। लेकिन अब जो है आपको हमने बताया यह कि कांग्रेस और इनको पैसे देने से बिल्कुल इनकारी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब हालात भी खराब हैं, हजारों ही लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है यहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि यहां पे बेतहाशा फ्लड्स आ गए हैं जिन्होंने के कट ऑफ कर दिया है टाउन्स को और फोर्स किया है बहुत सारे लोगों को कि वो भाग भाग के, ना सिर्फ ये कि कुछ लोग अपने घरों के छतों पे देखेंगे बल्कि ये एरिया से ही जा रहे हैं। तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं उनको क्वींसलैंड में से रेस्क्यू किया गया है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इन सारे एरियाज के अंदर असिस्टेंस पहुंचा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कॉर्न्स का जो एरिया है बड़ा जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बिल्कुल ग्रेट बैरियर रीफ के पास है, वो वहां पे भी जो बिजली है वो कट ऑफ है क्योंकि पानी जो है बहुत ज्यादा वहां पे एंटर हुआ हुआ है। इस इलाके में 160,000 जो लोग हैं उनके पास तो अब थोड़े दिनों में वो कह रहे हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा कंटेमिनेशन हो गई है। इसके यहां पे जो है कॉर्न्स के एरिया में 600 मिलीमीटर ऑफ रेन जो है पिछले 40 घंटे में हुई है जो कि 3 times हायर है इन दिसंबर में, इतनी एवरेज बारिश होती नहीं है। इसके इस सिलसिले में कॉर्न्स के एयरपोर्ट पे तमाम फ्लाइट्स को या तो कैंसिल किया गया है या पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि जो रनवेज भी हैं पूरा जो एयरपोर्ट है वो भी आधे से ज्यादा सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। 14,000 जो यहां पे लोग हैं और प्रॉपर्टीज हैं उनके पास जो है पावर नहीं है, और कॉन्स्टेंटली हैवी रेन और फ्लडिंग और स्ट्रांग विंड्स जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जेस्पर जो लेकर आया है उसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है, सबसे खतरनाक बात जनाब यहां पे ये है कि ये जो पानी अब शहरों के अंदर और एयरपोर्ट पे और बाकी जगह पे आ गया है कि लोग जो है वेड करके भी अपने आप को नहीं बचा सकते क्योंकि क्रोकोडाइल्स फिर रहे हैं इसके अंदर। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन क्रोकोडाइल्स रोमिंग अबाउट ऑल इन योर सिटी, कैसे आपको लगेगा? ओ माय गुडनेस, क्योंकि जाहिर है कि वो रिवर्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, सारा सिटी में पानी आ गया तो अब जी क्रोकोडाइल्स फिर रहे हैं, उफ गॉश। तो इसलिए ये और भी ज्यादा खतरे की बात है। आपने फिल्में देखी होंगी ना हॉलीवुड की कि वो जब ऐसे तूफान आते हैं तो क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, तो वैसा ही बस कुछ सीन जो है यहां पे इस वक्त बना हुआ है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट। यहां पे होते हैं चट्टा साहब, आप उनके पास जाएं। तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त डील्स देते हैं। पहले थे ये डिक्सी रोड मिसिसागा में, अब ये आ गए हैं ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल, और इनका नंबर है 9052262294, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और जनाब नानन कबोब, बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी लोकेशंस होती हैं, लेकिन अब जो नई आई है खासतौर पर 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 पे, उसके ऊपर आप मिसिसागा में जा सकते हैं और अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। कॉल कर लें जाने से पहले 8416285891। और जनाब हम आपको अब बता ही रहे हैं कि ये नया स्टोर जो है इसकी ओपनिंग हो रही है बोनेंजा सतरंगी, दिसंबर 22 को आप जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी इनके रेट्स कम है और ऑल फ्लैट 20% ऑफ आपको यहां पे मिलेगा। कुछ सेलिब्रिटीज भी यहां पे आए हुए हैं, उनके साथ भी आपकी मुलाकातें हो सकती हैं। ये ओपनिंग वीक जो है ये खत्म होएगा दिसंबर 31 को, तो इसमें आप जो भी अच्छी डील्स लेना चाहते हैं आप जाएं और अपने ले लें। अभी वैसे हॉलीडे सीजन भी है, आपके कोई पार्टीज फंक्शंस भी जाहिर है काफी सारे होंगे, तो अगर आपको पार्टीज फंक्शन के लिए भी कोई चीजें चाहिए, विमेन मैन किड्स एंड परफ्यूम सब कुछ यहां पे है, आप जाके यहां पे बोनेंजा सतरंगी पे शॉप कर सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकर साहब, ये एक फॉरेन न्यूज जो आउटलेट है उसको इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल डिफेंड किया है। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स जिनको के इन्होंने इलीगल एलियंस भी एक दफा कहा था कि जिनको के पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और हम अब उनको और ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। नवंबर के महीने में लास्ट मंथ आपको पता ही है केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया था नेशन वाइड, जिसमें के कहा था कि इलीगल फॉरेनर्स फॉरेन मुल्क छोड़ दें, जिसमें से ज्यादातर जो है अफगान्स थे। उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिकली अफगान्स के अगेंस्ट नहीं है, ये किसी एक एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एतराज किया था, लेकिन उन्होंने कहा था जी गवर्नमेंट ने कि नहीं, हम जो है इनको निकालने के लिए मजबूर हैं बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओवर 4 मिलियन अफगान्स जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उसमें से 1.7 मिलियन जो थे वो अनडॉक्यूमेंटेड थे। काकर साहब ने कहा कि 3 से 4 डेकेड्स यानी कि पिछले 40 साल से 4 मिलियन टू 5 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि कहते हैं जी कि विच इज रफली द पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड, पूरे एक मुल्क जितनी जो पॉपुलेशन है उसको हमने अपने मुल्क में रखा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान जो है वो नॉन सिग्नेटरी यानी कि वो सिग्नेटरी नहीं है 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज या 1965 प्रोटोकॉल्स के, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बड़े जेनरस लोग हैं, इसलिए उन्होंने इतनी ह्यूज तादाद जो है रेफ्यूजीज की उनको अकोमोडेट किया, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनके डीएनए में हॉस्पिटैलिटी है, और इसलिए हम उनको बार बार कहते रहे कि आप अपना लीगल मॉरल ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन हम पूरा कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, आप अपने आप को लीगल बनाएं, लेकिन उन्होंने अपने आप को लीगल नहीं बनाया और बिल्कुल शैडो में रहते रहे, जिसकी की वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के जो है बहुत ज्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ा। वो उन्होंने काकर साहब ने कहा जी कि ये सब लोग ब्लैक मार्केट के अंदर काम करते हैं, कोई टैक्सेस नहीं देते हैं और जो है कम पैसों पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी की वजह से पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट वर्कर्स हैं उनको फिर काम नहीं मिलता है, और ये जो है फिर क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्तियां करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हमारे मुल्क के अंदर जो है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, तो जिसकी की वजह से इनको इधर बिल्कुल रखा नहीं जाएगा। वीकेंड के ऊपर जनाब तो जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम थी उसने तो कमाल ही कर दिया, एक उन्होंने जो है वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज की, जिसके के साथ बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 मिलियन लोगों ने जिसको के देखा और उसके साथ जुड़े। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था, सारे YouTube, Facebook, Insta सबको डाउन किया गया था, लेकिन फिर भी जो कमाल की बात थी, न सिर्फ ये कि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ने यह वर्चुअल रैली जो है जिसमें सारी दुनिया से लोगों को जोड़ा, बल्कि एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड 4 मिनट स्पीच इमरान खान की जो है वो भी सुनाई, जिसके के अंदर उन्होंने बहुत सारे टुकड़े जोड़े हुए थे जो इनकी पुरानी स्पीचेस थी उनके, और बहुत सारी जो फोटोज थी जो इनकी पुरानी PTI की रैलीज थी उनसे, और दुनिया के अंदर काफी ज्यादा इसकी बात की गई और कहा गया कि ये कौन सोशल मीडिया टीम है जिसने कि इतना इनोवेटिव काम किया। लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में तो इन बेचारों को बैशिंग मिली, सब कुछ शट डाउन कर दिया गया। ठीक है जी, इसके उसमें बात करते हुए सुना जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि चूंकि PTI की पब्लिक रैलीज के ऊपर कंप्लीट गवर्नमेंट का बैन है, तो जो कि इलेक्शंस होने वाले हैं February 8 को, उसके लिए आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उसके लिए वोटिंग करनी पड़ेगी और पब्लिक रैलीज हमको बिल्कुल भी जो है अलाउ नहीं की जा रही पीटीआई को। हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज को हैरेस किया जा रहा है, लेकिन आप याद रखना कि हिस्ट्री आपकी ये सेक्रीफाइसेस जो है ये याद रखेगी जो आपके खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है। और फिर भी हमारे पार्टी वर्कर्स जो अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिनको क्विट करने के लिए कहा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, फिर भी वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि आपको, आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप फरवरी 8 को बाहर निकलें और उसके लिए वोटिंग करें। खान साहब, आपको पता ही है कि सिंस अगस्त जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगली जो है तोशाखाना के गिफ्ट्स जो हैं वो बेचे थे व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 2018 to 22, और उसके बाद फिर इनको वैसे तो बेल दी गई थी लेकिन साइफर केस के लिए इसको इनको अंदर रखा हुआ है। इमरान खान साहब ऑफकोर्स जो है ये सारे एलिगेशन को डिनाई करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो जनाब आज और भी काफी तबाही मची। वीकेंड के ऊपर इमरान खान होता रहा, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बहुत बड़ा ट्रेंड था, और फिर इमरान खान की जो रैली थी बहुत बड़ा ट्रेंड था। लेकिन आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चेंज हुआ। चेंज इसलिए हुआ कि दाऊद इब्राहिम नॉन गैंगस्टर जो है उनके बारे में खबर आई कि उनकी कराची के अंदर डेथ हो गई है। ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर आज आग की तरह इसलिए फैली जिसमें कि कहा गया कि ये इनको पॉइजन किया गया था कराची में, और इनको हॉस्पिटल में जब रश किया वहां पे उनकी डेथ हो गई, कि स्क्रीनशॉट्स एक जो यूजर था उसने पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैं उनके डालते हुए ये सारा कुछ कहा, जिसमें कि काकड़ साहब अलेजली शायद कह रहे थे कि जी ये जो है इधर आया है और इसको जो है दिया गया है जहर दिया गया है और ये मर गया है। बाद में डीएफआरएसी जो कि इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उसने जब चेक किया तो उसने कहा जी ये फेक न्यूज है, किसी को कुछ पता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहां है और जिंदा है या मर गया है। और ये जो एक्स के ऊपर जो ये पोस्ट डाली गई थी काकड़ की तरफ से, ये इसलिए गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो है उसके अंदर वो एक के यूज करते हैं, इसके अंदर दो के यूज किए गए हैं, तो इसलिए ये उनका ऑफिशियल नहीं है। दाऊद इब्राहिम आपको पता ही है कि बड़ा लोगों को जो है वो करते हैं, बड़ा लोग इनको जो है वो इस तरह से देखते हैं कि बड़े बहुत बड़े अपने जमाने के गैंगस्टर बन के उभरे थे। 1955 में डोंगरी के इलाके में पैदा हुए थे जो कि मुंबई का एक स्लम है, और फिर इन्होंने 12th मार्च 1993 को मुंबई में को उस वक्त छोड़ दिया था जब वहां पे ब्लास्ट हुए थे जिसमें कि 257 लोगों की डेथ हुई थी और 700 लोग बहुत ज्यादा गंभीर अंदाज में जख्मी हो गए थे, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज वर्थ 27 करोड़ इन दैट टाइम जो है बड़ी सख्त डैमेज हो गई थी। सीबीआई जो थी उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर केस दिया था और उनको कहा था कि इसके ऊपर प्रोब बिठाएं। इसके अंदर बहुत सारे एक्यूज जैसे कि मुस्तफा दोसा और अबू सैलम वगैरह जो है पकड़े गए थे और उनको कन्विक्ट किया गया था इस केस के अंदर June 16, 2017 को, और कहा गया था कि अलेजली दाऊद इब्राहिम ने यह सारा कुछ प्लान किया था। तो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड चलाते थे मुंबई में किसी जमाने में, लेकिन अब कराची में है या कहां है किसी को पता नहीं। बहरहाल आज इनकी डेथ की न्यूज ने काफी खलबली मचाई तो द होल सोशल मीडिया वॉज अबज विद हिज न्यूज। पिशावर हाईकोर्ट का जो बेंच है जी उसने अपना वर्डिक्ट अब रिजर्व किया है ऑन प्ली फाइल बाय पीटीआई, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि जुडिशियल सुपरविजन की हमको जरूरत है इलेक्शंस जो होने वाले हैं 8 फरवरी 2024 में। पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान अलोंग विद जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने ये सारे का सारा पीटीआई के जो एडवोकेट थे मुअज्जम बट उनका ये केस सुना, जिसमें कि उन्होंने ईसीपी को चैलेंज किया था कि ये जो आरओज और डीआरओज लगाए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना लगाए जाएं। पीटीआई ने इस तरह की सिमिलर जो पिटीशन थी वो लाहौर हाईकोर्ट में भी डाली थी, और बट साहब ने इधर कहा कि ईसीपी जो है कैसे करवा सकती है एक ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शंस अगर वो अपने अरेंजमेंट्स अभी से बनाना शुरू करेगी। अब जो है 18 दिसंबर है और इलेक्शंस फरवरी 8 को हैं, तो लेस देन 2 मंथ्स रह गए हैं, तो कैसे ये अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हैं और ये जो हॉचपॉच काम करेंगे उसके अंदर काम जो है वो ठीक नहीं रहेगा, तो इनको फौरन से पहले जो है स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए लेकिन ब्यूरोक्रेसी से नहीं करना चाहिए। तो अब इसका फैसला जब आएगा फिर हम आपको सुनाएंगे। केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जी सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज ज्वाइन किया है पीपीपी को, उन्होंने मुलाकातें की हैं इनके साथ जो पीपीपी लीडरशिप है खासतौर पर आसिफ अली जरदारी के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो पीपीपी और पीएमएलएन के लीडर्स के साथ आके मिल रहे हैं। पीपीपी के कुछ लीडर्स ने खुद ही कहा था कि वो हर पार्टी पीएमएलएन एएनपी क्यूडब्ल्यूपी सबके साथ जो है मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं इन इलेक्शंस में, यहां तक कि पीटीआई के साथ भी स्पेशली इन पंजाब, ताकि पीएमएलएन को जो है वो हराया जा सके। ये जो सारी पार्टीज हैं एएनपी क्यूडब्ल्यूपी ये सब जो हैं और जेयूआईएफ, इन्होंने आज पीपीपी से मुलाकातें की उनकी लीडरशिप से मुफ्ती महमूद सेंटर इन पिशावर में, और अब्दुल जलील जान JUIF के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने कहा जी कि ये दो राउंड ऑफ टॉक्स वैसे हमारे PMLN के साथ हो चुके हैं और तीसरा राउंड जो है अब हम जल्द करेंगे। इसके अलावा जाहिर है कि वो पीपीपी से भी बात कर रहे हैं, बाकियों से भी। इसके अलावा बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो है केपी के अंदर उसको भी चेयर किया और रणनीति बनाने की कोशिश की आने वाले इलेक्शंस के लिए। ठीक है जी, लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेर अफजल मरवत उनको फौरन के तौर पे छोड़ा जाए, जिनको के डिटेन किया गया था अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर लास्ट वीक और उनको अरेस्ट किया गया था आउटसाइड ऑफ लाहौर हाईकोर्ट डिसंबर 14 को, जहां पे कि वो आ रहे थे पार्टी के साथ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। पीटीआई ने अपने एक्स के ऊपर जो फुटेज दिखाई थी उसमें देखा जा रहा था कि पुलिस वाले इनको बहुत बुरे तरीके से कॉलर से पकड़ के घसीट रहे हैं, जिसके ऊपर ना सिर्फ पीटीआई ने बल्कि लॉयर्स बॉडीज ने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। और पीटीआई की जो ने कहा कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये लॉलेसनेस के अंदर इन्वॉल्व है और ये जो लोग बैठे हुए हैं यहां पे पुराने उनको फैसिलिटेट कर रही है, ये अनबायस्ड नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने वैसे नोटिस दिए हैं पुलिस को और लाहौर डीसी को कि जो है आप इनको फौरन छोड़ें, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की थी मरवत के भाई ने कि इनके भाई को इलीगली जो है वो डिटेन किया है तो इनको फौरन छोड़ा जाए। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब कुछ मामलात मुख्तलिफ नहीं हैं। हमने आपको फ्राइडे के दिन बताया था कि बहुत सारे वहां पे तकरीबन 78 ऑपोजिशन लीडर्स को जो है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है वो सस्पेंड किया गया, यानी कि दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं वहां पे सस्पेंड किया गया है। आज भी बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया एंड एज अ रिजल्ट 92 MPs ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जो हैं उनको अब सस्पेंड कर दिया गया है और वो आ नहीं सकते हैं ना तो राज्यसभा में ना ही लोकसभा के अंदर। और इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि इन MPs ने यह पूछने की जरूरत की थी कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये जो दिसंबर 13 को पार्लियामेंट का ब्रीच हुआ था जिसमें कि दो लोग जंप करके पब्लिक गैलरी से लोकसभा में आ गए थे और उन्होंने फिर स्मोक कैनिस्टर्स छोड़े थे, तो ये कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ जस्ट बिकॉज दे क्वेश्चन अमित शाह साहब जो कि राइट हैंड मैन है मोदी जी के, इन सबको जो है सस्पेंड किया गया। इसके ऊपर बात करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये डेमोक्रेसी जो है उसको तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑटोक्रेटिक जो ये इनकी गवर्नमेंट है डस्टबिन के में फेंक दिया है। ऑपोजिशन जो है वो क्या पूछ रही है, ऑपोजिशन इनसे सिर्फ सवाल कर रही है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है ये सारे के सारे जो इस तरह के सवाल और लेजिस्लेशन है उनको बुलडोज कर रही है और जितने डायसेंटिंग वॉइसेज हैं उनको क्रश कर रही है और डिबेट किसी बात पर भी नहीं कर रही है। कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने कहा कि ये ब्लड बाथ है जो कि राज्यसभा में देखा गया है अगेंस्ट 45 इंडिया पार्टी MBs। आपको पता ही है कि बहुत सारी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाई है जिसका नाम इंडिया है, तो वो कहते हैं जी कि हम होम मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं। जयराम रमेश जिनको के सस्पेंड भी किया गया उन्होंने कहा जी मुझे सस्पेंशन को मैं रोल ऑफ ऑनर समझता हूं क्योंकि अपने 19 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली दफा मुझे जो है सस्पेंड किया गया है और ये मर्डर है डेमोक्रेसी का जो कि सिर्फ मोदी के हिंदुस्तान में ही हो सकता है। गौरव गंगोई एक और MP जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो बुलडोज और क्रश किया जा रहा है लोगों का राइट टू स्पीक इन द हाउस, इसमें जो शाह साहब का फेलियर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और इतने लो लेवल पे आप स्टूप करेंगे हम मान ही समझ भी नहीं सकते थे। कांग्रेस के शशि थरूर जो है MP उन्होंने कहा कि मैं शॉक्ड हूं ये जो सस्पेंशन की गई हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी अब कोई डिमांड नहीं कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे और उससे कोई भी कुछ ना पूछे कि क्या हो रहा है, तो हम तो सिर्फ मिनिस्टर से एक इशू पूछ रहे हैं और अगर वो उसका जवाब साफ साफ दे दें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने कहा कि ये जो सस्पेंशन है मेरे लिए मैटर ऑफ प्राइड है और ये डार्केस्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त इस पार्लियामेंट को डिक्टेटर्स रन कर रहे हैं और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि ये जो एमपी जो पीएम साहब है इनके सेकंड जो दौर है उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ है और ये शो करता है इनकी वीकनेस, क्योंकि डायसेंटिंग वॉइसेज को जो रोकते हैं वो अपनी वीकनेस शो करते हैं। इसी तरह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस उन्होंने कहा जी कि ये जो था मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है कि डिसेंटिंग वॉइसेस को साइलेंट किया जाए। हैं जी पाजी बड़ा शोर हंगामा मचे आज हिंदुस्तान दे विच वी। अच्छा जनाब द वायर की स्टोरी है और ये बड़ी ही दिल दुखा देने वाली स्टोरी है और ये बताती है कि इंडिया का जो पंजाब है, कपूरथला, जलंधर और इस तरह के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, वहां से कंटिन्यूअसली औरतों को यह कह के, खासतौर पे जो अंडर प्रिविलेज औरतें हैं, उनको यह कह के कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स गल्फ में दिलाई जाएंगी, उनको वहां पे लेके जाया जाता है और उनको फिर जो है प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। बहुत सारी औरतें पंजाब की जिनको के अभी रिसेंटली इराक से निकाला गया था, क्योंकि वहां पे उन औरतों ने सैलरी मांगी थी काम करने की, और उसके बाद जो घर का ओनर था या जो एजेंट्स उनको लेकर गए थे, उन्होंने अपने कुछ उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जब उन्होंने उनको रिजिस्ट किया तो उनको मारा पीटा गया और बहुत उनका बुरा हाल किया। किसी तरह से ये जो खबर थी, ये जो इंडियन हाई कमीशन था उसको पहुंची। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी संत बलवीर सिंह सिचवाल जो हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की, उस तक जब बात पहुंची तो उन्होंने इन औरतों को, ये जो पंजाब की कुछ 15 औरतें वहां पर फंसी हुई थी इराक से, उन्होंने उनको निकाला। वो कहते हैं जी हमको फिजिकली अब्यूज करते हैं, हरास करते हैं, खाने को कुछ नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा बैच था 60 औरतों को, उन्होंने उनको फिर रेस्क्यू किया। एमपी जो थे संत ने उमान और सऊदी अरेबिया से भी। इसके अलावा जो शिकायतें थी वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी विक्रमजीत सिंह सने के पास भी आई थी। उन्होंने भी इस तरह पंजाब की बहुत सारी औरतों को गल्फ कंट्रीज में जो बसी हुई थी वहां पे निकाला। इनकी जो दास्तानें आज जो उन्होंने आज रिकॉर्ड की हैं द वायर वालों ने, उन्होंने कहा जी उसके अंदर औरतों ने कि हमको ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं पंजाब में और इमिग्रेशन अफसरों से छुपने के लिए, वो कहते हैं जी कि ये तो कोई शो करने के लिए वहां पे और काम करने के लिए दुबई जा रही हैं, तो डायरेक्टली इराक जाते ही नहीं है कि उनके कान ना खड़े हो जाए। तो वो कहते हैं जी ये दुबई जा रही हैं, फिर दुबई में हमें ये कई कई घंटे बिठाते हैं, हमारे पेपर तैयार करते हैं और फिर हमें ये ओमान और इराक और इस तरह की जगहों के ऊपर लेके जाते हैं। ये जो टाउट्स और ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं जी पहले तो ये मर्द थे, अब इसके अंदर औरतें भी शामिल उन्होंने पंजाब में, इंडियन पंजाब जो है उसमें कर ली है, और वो गरीब लोगों को जो कि 18 साल से 35 ईयर्स की एज में होती हैं, उनको जो फाइनेंशियली बेचारी कमजोर होती हैं, उनको ये लोग हायर करते हैं और इन कंट्रीज में ले जाके प्रोस्टिट्यूशन में धकेलते हैं। तो ये जो है, बहरहाल कुछ औरतों को तो बचाया है, लेकिन वो कहते हैं जी कब तक बचाएंगे। और जनाब शाहरुख खान की जो डंकी आने वाली है, उसने ऑलरेडी 5.61 करोड़ के रुपीज के जो इंडिया में एडवांस बुकिंग है वो कलेक्शंस जो हैं वो किए हैं। राजकुमार हिरानी इस फिल्म को बना रहे हैं और ये फिल्म सिनेमाज में आएगी दिसंबर 21 को। इसके 1.8 से ऊपर जो 1.8 लाख से ऊपर जो टिकट्स हैं वो बेचे जा सके हैं और तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 7,855 शोज ओपनिंग डे पे लगाए जाएंगे। शाहरुख खान की डंकी जो है, जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं प्रभास, उनकी सालार पार्ट वन सीज फायर के साथ क्लैश करेगी। और शाहरुख खान जो थे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए दुबई पहुंचे हुए थे और दुबई का जो ग्लोबल विलेज है उसके स्टेज पे ये खड़े होकर अपने फैंस के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जवान मैंने यंगस्टर्स के लिए बनाई थी, लेकिन अपने लिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि अपने लिए मुझे डंकी बनानी चाहिए, इट्स वेरी क्लोजर टू माई हार्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ जो अपने फैंस थे उनके साथ नीचे झुक झुक के हाथ भी शेक किए। जब उन्होंने हैंडशेक्स किए तो कुछ लोगों ने उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहा, उन्होंने कहा नहीं सर हम आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, टू द एक्सटेंट के फिर सिक्योरिटी भागते हुए आई और उन्होंने फिर हाथ छुड़ाए फैंस के शाहरुख खान से। फिर भी शाहरुख खान जो है स्टेज पे दूर जाके उनको वेव करते रहे और उनको किसेस जो है ऐसे फ्लाइंग किसेस भेजते रहे। तो जनाब ये बड़ा सीन वहां पे बना, बड़े वीडियोस बने कि लोग हाथ नहीं छोड़ रहे थे शाहरुख खान का। और जनाब अरिजीत सिंह जो है वो भी आज एक इंटरव्यू दे रहे थे, आपको पता ही है बड़े जबरदस्त किस्म के सिंगर हैं। वो कहते हैं जी कि ए आर रहमान द मास्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ऑटो ट्यून हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लोग अच्छा नहीं सुर में नहीं गा सकते थे उनको फिर ऑटो ट्यून करके बहुत ही ब्यूटीफुल साउंडिंग जो है सिंगर के तौर पे पेश किया जाता था। लेकिन वो कहते हैं जी कि ए आर रहमान के अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो खुद ऑटो ट्यून नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी भी यूज करते हैं, लेकिन पीपल लाइक मिथुन शर्मा एंड विशाल भारद्वाज जो कि म्यूजिशियंस हैं वो बिल्कुल ऑटो ट्यून का नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि खुद सिंगर का जो का सुर है वो निखर के सामने आना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी फिर भी अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सिंगर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हां अलबत्ता मुझे सोनू निगम जी के बारे में पता है कि वो इतने स्ट्रांग हैं म्यूजिकली कि वो ना तो ऑटो ट्यून के ऊपर बिलीव करते हैं ना उसको यूज करते हैं। लेकिन मैं खुद भी समझता हूं कि अगर आप अच्छे सिंगर हैं, अगर आप अच्छे सिंगर नहीं है तो ऑटो ट्यून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जब इमोशन से गा रहे होते हैं तो आप जो है बहुत परफेक्टली गाएं। तो जैसा भी गाएं दिल से गाएं, ऑटो ट्यून ना यूज करें क्योंकि उसमें आप एक्सपोज होते हैं। ठीक है जी। और जनाब दीपिका पादुकोण जो है उनको भी बड़े मजे आ गए हैं ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। आपको पता ही है कि उनकी बड़ी मशहूर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी फिल्म गहराइयां, तो उसके अब उनको मजे आ गए हैं। तो अब वो कहती हैं जी कि ओटीटी का जो ऑडियंस है वो भी बड़ा बहुत बड़ा है। तो अब खबरें आ रही हैं कि नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर वो एक बहुत ही मेगा एक्शन थ्रिलर जिसके के अंदर ड्रग माफिया कल्चर जो है हिंदुस्तान का उसको दिखाया जाएगा, उसकी ये तैयारी कर रही हैं और अपना स्केड्यूल चेक कर रही हैं। जैसे ही उनको डेट्स मिल जाएंगी तो सोर्सेज का कहना है कि नेक्स्ट ईयर फिर इसकी जो है शूटिंग शुरू वो कर देंगी। एंड जनाब सुना दी है खबर पाकिस्तान की बड़ी फेंटी लगाई ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि हमने आपको बताया ही था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं जीता है। बहरहाल जी, जो फर्स्ट टेस्ट पर्थ में हुआ था उसमें 360 रन से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। इसके ऊपर जिस वक्त एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस पर बात करते हुए पाकिस्तान टीम डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने कहा जी कि हमने कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जी एक परफॉर्मेंस किसी लड़के ने अच्छी नहीं दी तो उसको चेंज कर दिया जाए। शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम जो हैं सिर्फ पूरी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट देर आर 11 पीपल इन स्क्वाड, तो सबको जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा सरफराज की परफॉर्मेंस पे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी सरफराज ने न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी उसमें बहुत अच्छा काम किया था, अनफॉर्चुनेटली इस मैच में वो कुछ भी नहीं कर सके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फौरन से थिंक करना शुरू कर दें कि अब पूरी की पूरी टीम को एक मैच के बाद ही हमको चेंज करना है। हालांकि सरफराज जो है वो न्यू नहीं है टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सॉरी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जो है उसका टूर कर चुके हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में भी पता है, लेकिन हम उसके स्किल को जो है वो डाउट अभी एक मैच के बाद नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने रिजवान के बारे में कहा जी कि रिजवान को जो है हम कंसिडर करेंगे, अभी कंडीशंस जो है सिडनी की, अब जो सेकंड मैच जहां पे टेस्ट मैच होएगा उसकी रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि रिजवान को खिलाना है कि नहीं खिलाना
मेन विकेट कीपर।
हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी। मगर ये लोग ना पता क्या, इतनी लंबी फ्लाइट करके गए थे, थके हुए थे।
हाँ, थके हुए थे पहले, तो सेकंड मैच में ठीक हो जाएंगे।
सेकंड आप तो नहीं समझती है, मैं समझता हूँ कि सेकंड मैच,
सेकंड टेस्ट मैच में जीतेंगे इंशाल्लाह,
जीतेंगे। सेकंड मैच जो है वो अपना ही है,
हिस्ट्री क्रिएट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में।
ऑफकोर्स
ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे,
ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। आप देखिएगा कितनी बुरी तरह मारेंगे वो कि बस आप
उसके बाद फिर दो दिन फिर लेटे रहेंगे,
आपको यकीन नहीं आएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा,
आपको यकीन नहीं आएगा। मैं पहले से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ।
ठीक है ठीक है,
नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता,
उसमें ऑस्ट्रेलिया लेटेगा,
लेट गया
ठीक है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना बड़े जो है ना वो अनहॉस्पिटेबल भी हैं, कोई मतलब हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखा रहे यार। तुम्हारे तुमने अपने मुल्क में जो है मेहमान बुलाया, बंदा आ ही जाता है कोई कद मैच है, मतलब तुमने हर मैच जरूर जीतना है, तुमने जरूर बताना है हम दुनिया की सबसे बड़ी टीम है। वो यार मन लिया तुम वर्ल्ड कप चैंपियन हो, बस बस भी करो हूं।
हाँ
जरूर हर मैच जीतना है, हूं तुम कोई हारिया भी करो,
हार जाएंगे नेक्स्ट वीक।
अच्छा अच्छा,
आप परवाह ना करें, आप
चीज के दिल पे ना ले यार, है?
दिल पे ना लो। अच्छा, दिल पे ना लो बस,
ठीक है।
एब्सोल्युटली नॉट,
बस एब्सोल्युटली नॉट, तुसी कह देता मैं मान लिया,
ठीक है
ठीक है जी। अच्छा जनाब, अल नसर के जो स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनाब, 2023 में हाईएस्ट गोल टेकर जो हैं वो हैं अलोंग विद मैनचेस्टर सिटी के जो इर्लिंग हॉलैंड, सिर्फ 23 ईयर्स उनकी एज है, उसके साथ दोनों ने इस साल अभी तक 50 गोल्स बनाए हैं। हालैंड जो है जी उनका भी बड़ा जबरदस्त ये ईयर चल रहा है। पहले उनकी उनकी टीम ने जीता प्रीमियर लीग, फिर चैंपियंस लीग, फिर एफए कप टाइटल्स, इसके अलावा इनको दिया गया है गोल्डन बूट, यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं, और इन्होंने 14 गोल्स प्रीमियर लीग के बीच में बनाए हैं, 30 अदर्स जो है दूसरे कॉम्पिटिशन में, और 6 अपनी नेशनल टीम जो है उसके लिए। ये जो है इसके बाद जो बाकी के जो दो लोग इनको ट्रेल कर रहे हैं वो हैं इंग्लैंड के हैरी केन और फ्रांस के काइली एम्बैपे। इन दोनों ने बनाए हैं अभी तक 49 गोल्स। एम्बैपे सिर्फ 24 ईयर्स के, आपको पता ही है बड़े जबरदस्त हैं। ही हैज मेड 230 क्लब गोल्स हैं जी, तो बड़े ही जबरदस्त इनकी भी स्ट्रेंथ है। और ये जो है अभी तक जितने भी फ्रांस ने दोनों जो वर्ल्ड कप्स खेले हैं उसके अंदर भी ये थे। इसके अलावा केन जो है उन्होंने भी अपनी जो बैन म्यूनिक है उसके लिए भी बड़े स्कोर किया। तो ये जनाब दे आर, दीज फोर बॉयज आर रियली गोइंग स्ट्रांग,
अमेजिंग
अमेजिंग अमेजिंग, रेयर टैलेंट, रेयर टैलेंट। वही जब मेरा बेटा कहता है ना मैं भी सॉकर प्लेयर बनूंगा तो मैं कहती हूँ पहले इनको देख इनको देख और शर्म कर,
ना ना शर्म ना कर, देख के ही
बंदा, रेयर टैलेंट है,
देख के ही बंदा बनता है, यू हैव टू इनकरेज।
नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे पता है इस तरह का रेयर टैलेंट है उसके अपने बच्चे का मां को ज्यादा किसी ने नहीं पता होता पाया तो मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने कहा मैं देख मैं तेरी माँ, मुझे पता है तेरे अंदर इस तरह का कोई टैलेंट नहीं। देख ले मुझे सही।
That's so bad.
बैठ गया, ये तो सच है ना भाई।
नहीं
तो उसको मैंने कहा पायन तुझे पढ़ाई करो। तुझे साकर शाकर छोड़ो।
Don't say that to your kids. Okay? Encourage them. Encourage them for whatever they are doing.
So I'm encouraging him not to play soccer.
ये थी हमारी आज की न्यूज बहन की, और कोई बात सुनना नहीं चाहता। ये थी हमारी आज की
लेकिन आपकी बदनसीबी। आई विल सी यू टुमारो अगेन इंशाल्लाह।
ये थी हमारी आज की न्यूज, बखिया की न्यूज। इंशाल्लाह ताला कल शाजिया हो ना हो, मैं और आमिर कल नहीं,
कल हो ना हो,
कल हो ना हो। चलिए साहब, अब मैं ले चलता हूँ आपको जीशान अहमद की जानेब, दूसरे स्टूडियो में। जीशान तशरीफ फरमा है और आपको एंटरटेन करेंगे अब। जीशान थैंक यू सो मच शाजिया जी, एंड बगैर एनी डिले, प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान, समाप्त फरमाइए।
जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। नया कोई दिल खिलाएगी, नया कोई दिल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और खीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया रंग रसिया हो। बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा
सोने की थारी में जो ना परोसा
अरे सोने की थारी में हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा और खाए गोरी का यार बलम तरसे
रंग पर से
ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से अरे लौंगा इलाची का भाई
लौंगा इलाची का
हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया
लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया
हाँ लौंगा इलाची का हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया अरे चब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे
होली है
रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली
रंग
बेला चमेली का सेज बिछाया और बेला चमेली का सेज बिछाया बेला चमेली का सेज बिछाया
बेला चमेली का सेज बिछाया
और बेला चमेली का चमेली का सेज बिछाया सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक सोए गोरी का याद बलम तरसे
रंग पर से होली है
और रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हो रंग
बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
Okay.